ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिनि गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। तो आज वैष्णव कैलेंडर के अनुसार श्रील लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। जब भी वैष्णव का आविर्भाव दिवस या तिरोभाव दिवस होता है तो हमारे लिए एक अवसर होता है जिससे हम उन महान वैष्णवों की कृपा के लिए प्रार्थना करें। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैष्णव हैं वो काल के प्रभाव से परे होते हैं, अर्थात जहाँ भी वैष्णव हैं अगर आप उनको याद कर रहे हैं और उनकी शिक्षाओं को सुन रहे हैं तो इसके द्वारा हम उनके साथ संबंधित हो सकते हैं। तो लोचनदास ठाकुर थोड़ा सा हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और मुख्यतः उन्होंने जो भजन लिखे हैं उसमें से दो महत्वपूर्ण भजन हैं। एक जो अभी हमने गाया परम करुण पहु द्विजन, और दूसरा अक्रोध परमानंद, इसके पर हम चर्चा करेंगे। इनका मुख्य कंट्रीब्यूशन है श्री चैतन्य मंगल, एक ग्रंथ जो उन्होंने लिखा श्रीखंड नाम के गांव में उनके गुरुदेव की आज्ञा से, कि गुरुदेव का नाम श्री नरहरि सरकार है। और इस ग्रंथ में वो इतनी सुंदर लीलाएं बताते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, विशेष करके बंगाली में कविता के रूप में, पोएट्री फॉर्म में। जैसे आप जानते हैं कोई भी चीज़ को अगर कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसको याद करना आसान हो जाता है। जैसे बचपन में हम स्कूल में कोई चीज़ को याद करना उसका एक कविता बना देते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी, इस तरह कोई चीज़ आपको अपनी बाल्य लीलाएं याद आ रही होंगी। इसमें तो कोई भी चीज़ को अगर हम गाते हैं तो आसान हो जाते हैं। जैसे भारत में देखते हैं रामायण भी है, दोहों में लिखी गई है चौपाई में, तो वो गाने से जो है याद करना आसान हो जाता है। तो इन्होंने बहुत सरल बंगाली भाषा में ये पूरा ग्रंथ लिखा है जिसको चैतन्य मंगल बोलते हैं। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की लीला के तीन प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए चैतन्य चरितामृत है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, और दूसरे दो ग्रंथ हैं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने और चैतन्य मंगल लिखा है श्री लोचन दास ठाकुर ने। वास्तव में पहले तो चैतन्य भागवत जिसको हम बोल रहे हैं उसका भी पहले नाम चैतन्य मंगल ही रखा गया था, तो दो ग्रंथों का नाम एक ही हो गया। तब भक्तों में एक सभा में इस बात पे चर्चा हुई कि ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कई बार होता है दो डिवोटीज होते हैं, दो का एक ही नाम होता है, तो ये कौन से डिवोटी हैं, यू नो मनोहर, कौन से मनोहर, यू नो वृंदावन वाले या मायापुर वाले। तो इसमें दो पुस्तकों का एक ही नाम है। तो वैष्णव सभा में चर्चा की गई कि वृंदावन दास ठाकुर तो व्यासदेव के अवतार हैं, इसीलिए उनके ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत होना चाहिए। तो लोचन दास ठाकुर की किताब का नाम फिर चैतन्य मंगल ही रहा, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लिखी हैं, जो कुछ कुछ लीलाएं जो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में नहीं हैं वो भी दिए गए हैं, और जो कुछ ऑलरेडी हैं उसको भी थोड़ा अलग रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो हमारे पास जो थोड़ा सा समय है उसके आधार के ऊपर पहले हम उनके जन्म का और बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उनके भजन परम करुणा पहु दुई जन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वे प्रकट हुए इस वर्ष में 1520 इंग्लिश कैलेंडर से, इसका मतलब जब वो प्रकट हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी 34 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था, ऑलरेडी वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे। और लोचनदास ठाकुर का जन्म एक कोग्राम नाम के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है कोग्राम, और वहाँ पर ररीय वैद्यों के परिवार में हुआ, यानी उनके परिवार के लोग वैद्य थे। इनके गुरु का नाम था श्री नरहरि सरकार, जो मुकुंद सरकार के भाई हैं। मुकुंद सरकार के पुत्र का नाम आप जानते हैं कि रघुनंदन ठाकुर है। तो ऐसे बताया था उनके जीवन की एक घटना, इनके पिताजी का नाम था कमलाकर दास, इनकी माता का नाम था सदानंद, और वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। और ये बड़े हुए अपने नाना के घर में, और वहीं पर इन्होंने विद्या और भौतिक ज्ञान भी प्राप्त किया। जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षदों के दर्शन प्राप्त हुए। उनके बारे में एक कथा है जो इस किताब में नहीं है, पता नहीं, लेकिन कहाँ पर मैंने सुनी है कि उनका विवाह जो है बहुत छोटी उम्र में हो गया था। उस जमाने में कई बार लोगों का विवाह 5 साल या 6 साल की उम्र में हो जाता था। हरे कृष्ण, जब उनको पता भी नहीं था कि विवाह क्या है। तो पहले ज़माने में ऐसे होता था, विवाह पहले नक किया जाता था और बाद में बड़े होने के बाद वो साथ में रहने लगते थे। तो हुआ ये कि उनका विवाह तो हो चुका था और बाद में वो नरहरि सरकार के आश्रम में रहने लगे, ऐसे ब्रह्मचारी की तरह। तो कुछ साल बीतने के बाद जिनसे उनका विवाह होना था उनके पिता यानी उनके ससुर जी ने पता लगाया और बोले आपके आश्रम में जो भक्त हैं वो तो हमारे दामाद हैं, हाँ इनको बेटी ऐसे आश्रम से वापस हमारे पास भेज दो, है ना। तो उनको बोला गया जाने के लिए, तो गए और उनको कभी गए नहीं थे, वो जानते नहीं थे कौन मेरे होने वाली पत्नी हैं या सास ससुर हैं, खाली गांव का नाम पता था। और गांव का नाम पूछते पूछते गए और रास्ते में कोई एक कुआं देखा, वहां पे कोई एक माता कुएं से पानी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा उनसे कि गांव कहाँ पर है, माता जी ये गांव कहाँ है, वेयर इज दिस विलेज माता जी। तो उन्होंने रास्ता बताया, आप यहाँ चले जाओ। और जब ढूंढे ढूंढे घर में पहुंचे तो क्या पता चला कि जिसको उन्होंने माता जी कहा था वही उनके होने वाले पत्नी थे, हरे कृष्णा। तो उन्होंने अपने ससुर जी को बताया कि मैंने तो इनको माता बोला है, मैं इनको माता की दृष्टि देखा, अब इनको मैं कैसे देख सकता हूँ। तो उन्होंने भी परमिशन दी, जाओ आप वापस आश्रम जा सकते हो। तो इसलिए ब्रह्मचारी को हर स्त्री को माँ के समान मानना चाहिए, ये बहुत एटिकेट भी है और बहुत सेफ भी है ना। तो एक्चुअली हर एक स्त्री, इवन गृहस्थ को भी, अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ करके हर स्त्री को माता के समान मानते हैं, रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक व्यवहार जो है वैदिक कल्चर का एक भाग है। तो फिर वो आकर यहाँ पर कई सारे श्रीखंड में आए, अपने गुरु के आश्रम में रहे, वहाँ पर कीर्तन सीखा उन्होंने, अलग अलग रागों में गाना, और बहुत ही विख्यात थे उनकी जो टेक्निक है। तो अपने अपने ग्रंथों में वो लिखते हैं चैतन्य मंगल के शुरुआत में, मैं श्री नरहरि सरकार का सेवक हूँ, वही मेरे प्राण हैं, मेरी इच्छा यही है कि मैं उनके चरणों में स्थान प्राप्त करूँ। मेरी इच्छा में सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं अपने आप जैसे पापी व्यक्ति को उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, जिससे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर सकूं, वे ही मेरे आश्रय हैं। ये जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है चैतन्य मंगल, इसका आधार था मुरारी गुप्ता की एक डायरी। मुरारी गुप्ता, जैसे आप जानते हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, और मुरारी गुप्ता रहने वाले थे नवद्वीप के, और महाप्रभु की लीला को लाइव देख रहे थे, लाइव मतलब इंटरनेट नहीं, सामने सामने देख रहे थे। और उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम है चैतन्य चरितामृत महाकाव्य। अब इसका अंग्रेजी में भी यहाँ इस्कॉन के भक्तों ने किया है, ये संस्कृत में थी किताब, और उन्होंने अपनी डायरी भी लिखी है कड़छा। तो ये सब ग्रंथों को पढ़ के, क्योंकि लोचनदास ठाकुर ने तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी नहीं किए, लेकिन सिर्फ पढ़ के और सुन करके उन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। तो वो बताते हैं अपनी किताब में कि मुरारी गुप्ता ने भगवान गौरंग की लीलाओं का गान किया है, और वो लीलाओं को मैंने सुना है, और उसी से मैं आकर्षित होकर ये चैतन्य मंगल लिख रहा हूँ। मेरे जीवन की आशा ये है कि मैं श्री नरहरि सरकार के चरणों के पास रह सकूँ, उनकी सेवा करूँ, मैं गौरंग महाप्रभु का गुणगान करूँ। मेरे स्वामी नरहरि सरकार हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, यही मेरी अभिलाषा है। इन्होंने किताब लिखी है चैतन्य मंगल, ये पांचाली राग में है, और चैतन्य महाप्रभु के गुणगान के लिए उन्होंने ये ग्रंथ को निर्माण लिखा है। चैतन्य मंगल के शुरुआत में लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, ये वही जो मुरारी गुप्ता हैं नवद्वीप में रहते थे, उन्होंने कई सारे संस्कृत श्लोक लिखे हैं भगवान गौरंग महाप्रभु के बारे में। मैंने ये श्लोकों को सुना है, उनको याद भी किया है, और तब मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं इन्हीं श्लोकों को बंगाली में प्रस्तुत करूं। शुरुआत में वो वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने भी किताब लिखा, इसका पहले नाम चैतन्य मंगल था और बाद में चैतन्य भागवत हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में हृदय से प्रार्थना अर्पण करता हूँ, उनके लिखे हुए ग्रंथ चैतन्य भागवत ने पूरे जगत को मोहित कर दिया। इस भौतिक दुनिया में अगर कोई दो व्यक्ति एक ही ग्रंथ लिखते हैं एक ही विषय पर, आपस में ईर्ष्या होती है, और सब कहते हैं प्रभु जी मेरा किताब पढ़ो, उसका किताब में सब गड़बड़ है, सब एरर्स हैं, आप किताब पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ने एक ही ग्रंथ लिखा है, और एक जो लेखक हैं दूसरे लेखक का गुणगान कर रहे हैं कि उनका ग्रंथ ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, और वो शुरुआत में ही बोलते हैं ओरे मूढ़ा लोक का सुना चैतन्य मंगल, अरे सब मूर्खों हमको प्रेम से बोल रहे हैं, अरे मूर्खों चैतन्य भागवत पढ़ो, जहर नाश है सर्व अमंगल, चैतन्य भागवत को सुनने से सब अमंगल दूर हो जाए। तो ये निर्मत्सरता है, ईर्ष्या से निवृत्ति, ये क्वालिफिकेशन है भगवान के लीलाओं का गान करने के लिए या सुनने के लिए, ईर्ष्या से मुक्त होना। जब तक हम भौतिक दुनिया में हमारे अंदर ईर्ष्या की भाव है, तब तक हम भगवान को सही रूप में नहीं जान सकते। श्रीमद् भागवत बारे में कहा गया, ये परमहंस संहिता है, निर्मत्सरानाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, जो ईर्ष्या से मुक्त हैं, वही व्यक्ति इस ग्रंथ का समझ सकते हैं। खुद अगर हम ईर्ष्या से मुक्त नहीं है तो फिर क्या करें? प्रभुपाद जी बताते हैं, चेतो दर्पणम आर्जनम, जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत भगवान का नाम गुणगान करने से हमारे अंदर फिर से वह प्रेम जागृत हो सकता है और ईर्ष्या से निवृत्ति हो सकती है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं यहां पर बताऊंगा, सूत्रखंड है, आदिखंड, मध्यखंड, अंत्यखंड में लीलाएं हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग लीला है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले नारद मुनि, जो एक कंपैशनेट बहुत ही दयालु वैष्णव हैं, सन्यासी, परम वैष्णव, महाभागवत, वो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे और उनको बहुत दुख हो रहा था कि अब कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है और लोग कोई भी कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं ले रहे। तो भ्रमण करते करते भगवान के धाम में गए, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बताया कि अब लोग बहुत दुखी हैं, कैसे उद्धार होगा। तो भगवान ने उनको बताया कि आप चिंता मत करो, कलयुग में मैं स्वयं प्रकट होने वाला हूँ, मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करूँगा और वही प्रेम का वितरित करूँगा। जैसे कविराज गोस्वामी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के तीन जो अंतरंग कारण वो यही हैं, राधा भाव द्युति सुबलिता, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आ रहे हैं। जो सर्वज्ञ भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जानना चाहते थे कि राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है और दूसरा कि राधा रानी को उस प्रेम में क्या मिठास का अनुभव हो रहा है और तीसरा राधा रानी के मेरे अंदर क्या गुण है जो राधा रानी को आकर्षित कर रहे हैं। तो इन तीन कारणों से भगवान गौरंग महाप्रभु का अवतार हुआ। तो इस लीला में भगवान बता रहे हैं नारद मुनि को कि मैं आने वाला हूँ बहुत जल्दी और आप ये समाचार सबको दो। उस दौरान नारद मुनि सब जगह भ्रमण करने लगे। एक और घटना हुई, कुछ समय नारद मुनि भगवान का महाप्रसाद लेने के लिए बहुत उत्सुक थे, कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अभी आपको महाप्रसाद चाहिए तो बस आप तुरंत चले जाओ, काउंटर पे मिल जाएगा, और ये अगर आप पुजारी को जानते हो तो काउंटर पे जाने की भी जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे महाप्रसाद मिल ही जाता है। लेकिन आप देखिए महाप्रसाद कितना दुर्लभ है कि नारद मुनि ने लक्ष्मी देवी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भगवान नारायण का थोड़ा सा महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी देवी ने बोला ठीक है मैं पूछूंगी। अभी अगर पूछना है भगवान नारायण से तो उस समय पूछना चाहिए जब उनका मूड अच्छा हो। तो कुछ सालों के बाद, इतने सालों तक वेट करना पड़ा, ने भगवान नारायण से कुछ कहा, भगवान नारायण लक्ष्मी देवी की ओर देखकर बोले क्या बात है, मेरा सुदर्शन चक्र कुछ कह रहा है क्या? लक्ष्मी देवी बोली मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए आपको? बोले मुझे आपके भक्त नारद मुनि ने कुछ महाप्रसाद मांगा है, आपकी परमिशन चाहिए। भगवान नारायण थोड़ी देर सोच के बोले ऐसा वचन तुमने क्यों दे दिया, ठीक है जब मैं नहीं देख रहा हूं तभी दे देना उनको। तो मतलब ये वैकुंठ तक चलता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, सब काम सबके सामने ऑफिशियली नहीं होता है ना। तो अगर आपको महाप्रसाद चाहिए, सबके सामने आप मांगोगे तो पुजारी नहीं दे पाएंगे, बस अलग से जाके प्रणाम करके हरे कृष्ण। तो इसके बाद लक्ष्मी देवी को कई वर्ष तक रुकना पड़ा, उसके बाद जब देखा कि कोई नहीं देख रहा तब उन्होंने भगवान नारायण का महाप्रसाद दिया। और भगवान नारायण का प्रसाद लेकर नारद मुनि के अंदर प्रेम के अष्टविकार प्रकट होने लगे, वो एक्सटेसी में आ गए और फिर वो समाचार सबको देने लगे कि भगवान गौरंग महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं कलयुग में, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करते हुए उसी प्रेम का वितरण करने वाले हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे और जोर से गाने लगे गौरंग। आई थिंक ठंडी के कारण आवाज़ सबका बहुत धीमे हो गया है, थोड़ा जोर से बोलने से भी ठंडी दूर हो जाती है। गौरंगा 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 गौरंगा। सब जगह भगवान गौरंग का नाम गुणगान कर रहे थे, सब लोगों में जा रहे थे, ब्रह्मा जी को बता रहे थे। फिर शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी को उन्होंने बताया ये शुभ समाचार, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। और शिव जी ने उनसे पूछा नारद मुनि से कि आप हमेशा भगवान का गुणगान कर रहे होते हो, लेकिन आज आपके अंदर कुछ बहुत ही विशेष लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है आपके इस एक्सटेसी का? तब नारद मुनि ने बहुत ही धीमे स्वर में बताया, आज मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद मिल गया। तब शिवजी ने से बताया कि देखो आप मेरे भाई हो, क्योंकि भगवान आप जानते हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिवजी भी ऐसे माने जाते हैं, तो हम दोनों भाई हैं। और आप अगर महाप्रसाद आपको मिला तो आपको मुझे थोड़ा सा देना चाहिए था। हरे कृष्णा, व्हाट काइंड ऑफ ब्रदरहुड, ये कैसा भाईपन है? तो नारद मुनि बोले सॉरी कुछ बचा ही नहीं है, ये थोड़ा सा बचा है, कि आदमी एक थोड़ा सा एक दाना था और वो उन्होंने शिवजी को दिया। और शिवजी ने वो ग्रहण करने के बाद शिवजी के अंदर भी बहुत विशेष लक्षण प्रकट होने लगे, वो भी जोर से गाने लगे गौरांगा 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 गौ। शिवजी इतनी जोर जोर से नृत्य करने लगे, आप मत करिए क्योंकि बैठ के क्लास है, और शिवजी ऐसे डांस करने लगे कि पूरे धरती कांपने लगी, जहां वो पैर रखते वहां पर धरती का भाग दब जाता, सारे पहाड़ हिलने लग गए, सारे सागर विचलित हो गए, अनंत शेष जो धरती को धारण करते हैं अपना फंड पीछे रख कर देखने लगे, हरि बोल व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। और उस समय धरती माता घबरा गई, ये क्या हो गया, ये इस प्रकार का नृत्य तो सिर्फ प्रलय के समय देखा जाता है। तो धरती माता पार्वती देवी के पास गए जो शिवजी के पत्नी है, बोले ये क्या हो रहा है, अपने पति को जरा संभालो नहीं तो पूरे धरती का नाश हो जाएगा। तो पार्वती देवी ने कुछ कठोर शब्द बोले जिससे शिवजी का नृत्य भंग हो गया और शिवजी शांत हुए, क्रोधित हो गए, ये क्या किया तुमने, मैं भगवान गौरंग का गुणगान कर रहा था, तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब कर दिया। पार्वती देवी घबरा कर बोली मुझे क्षमा कर दो, लेकिन प्रलय का समय नहीं आया अभी, आपके नृत्य से धरती को बहुत डर लग रहा था इसलिए उनकी रक्षा के लिए मुझे बताना पड़ा आपको, अब मुझे क्षमा कर दो। शिवजी थोड़े से शांत हो गए और शांत होने के बाद पार्वती देवी ने पूछा कि आप तो हमेशा ही भगवान का गुणगान करते हो, हमेशा उनके महिमा का गान करते हो, लेकिन आज ये बड़ा विचित्र नृत्य था, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। तब शिवजी ने उसका रहस्य बताया, वो रहस्य क्या था, महाप्रसादे, अभी नहीं 9 बजे के बाद, अभी 8:30 बजे हैं। इस्कॉन में एक मंत्र है जिसे सबकी नींद खुल जाती है, वो है महाप्रसादे गोविंदे, और एक मंत्र जिसे सबको नींद आ जाती है वो है ओम नमो भगवते। यस, इस्कॉन में हो या वृंदावन हो मायापुर बम्बई हो, सब जगह ये फॉर्मूला है। तो पार्वती देवी ने उनसे पूछा कि ये महाप्रसाद अगर आपको मिला, मैं तो आपकी पत्नी हूं, आपको जो मिलता है मुझे देना चाहिए 50-50, आधा, मैं अर्धांगिनी हूं, आपने मुझे क्यों नहीं दिया। शिवजी बोले आपके लिए नहीं है, हरे कृष्णा। शिवजी बहुत अनासक्त हैं, वो एक क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हैंड पैक्ड हस्बैंड नहीं है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं वो अटैच नहीं है अपने पुत्र, तुरंत चले गए। लेकिन पार्वती देवी भी भगवान की शक्ति है, एक्चुअली वही शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, वो दूसरे रूप में पार्वती के रूप में है। तो उन्होंने जाके तपस्या की इस महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक सीमंत द्वीप में, और वो भगवान गौरंग महाप्रभु को याद कर रहे थे, और कई वर्ष हजारों वर्षों के बाद उनको भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ा। आजानुलंबित तो भुजो कनकावधा, तो इनके भुजाएं बहुत लंबे, आंखें बहुत, भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब भगवान गौरंग के चरणों की जो धूल है वो उन्होंने अपने बालों में लगाई, सीमंत द्वीप बोलते हैं उसका। और भगवान गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना की कि मेरा क्या भविष्य है, क्योंकि बोलते हैं जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ पर भी आप हो मेरा स्थान ही नहीं है, तो मैं कैसे आपके धाम में रहूँगी। तब भगवान गौरंग ने बताया कि नवदीप धाम में आप प्रौढ़ माया के रूप में रहोगे, और जो जीव अभी तक पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए हैं उनकी दृष्टि को आप ढक के रखोगे, ये आपका रोल होगा प्रौढ़ माया। और फिर पार्वती ने और निवेदन किया कि मैं ये चाहती हूँ कि आपका महाप्रसाद सबको मिले, धरती पे एक स्थान हो जहाँ पर आपका प्रसाद बिना किसी भेद के, जाति के, धर्म के, इवन पशुओं को, जानवरों को भी ये महाप्रसाद मिले। भगवान ने उनसे कहा कि यस, एक स्थान है कलयुग में, वो है श्री जगन्नाथपुरी धाम। आप जगन्नाथपुरी धाम जाओगे तो वहाँ पर कोई भेद नहीं है जूठे का, जैसे यहाँ होता है कि आप किसी के प्लेट में से लो तो बहुत ऑफेंड हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं है, ये प्रसाद सबके लिए, इवन देवता भी तरसते हैं जगन्नाथपुरी का प्रसाद प्राप्त करने के लिए। ब्रज में शुद्धिकरण होता है फास्ट, यहाँ की धूल को लेने से, ब्रज की धूल। मायापुर में शुद्धिकरण होता है नाम स्मरण करने से, और जगन्नाथपुरी में शुद्धिकरण होता है प्रसाद देने से, इसलिए जगन्नाथपुरी सबसे प्रिय है तीनों ही प्रिय है, तो तब से ये प्रथा है। और एक बहुत सुंदर कथा यहाँ बताई गई है चैतन्य मंगल में कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी बाल्य लीला कर रहे थे, आप जानते हैं महाप्रभु रोते थे, और जब रोने लगते तब सब लोग जब मिलकर बोलते हरी हरी, इतना जोर से बोलिए कि आवाज कम से कम मायापुर तक जाए, हरी 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 हरी। अभी अभी तक तो ये राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर तक भी नहीं गया आवाज, नहीं तो आवाज आती डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरी 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 हरी। तो महाप्रभु जब सब माताएं मिलकर हरी हरी बोलते तो रोना बंद कर देते, लेकिन एक दिन निमाई रो रहे थे, शची माता ने पूछा आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ भी लाने के लिए तैयार हूं, मांगो क्या चाहिए। निमाई ने बोले मुझे वो चंद्रमा चाहिए, वो चंद्रमा। शची माता बोले वो चंद्रमा कैसे ला सकते हैं। निमाई बोले फिर आपने क्या बोला, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। तभी शची माता उनको बोलने लगी एक्चुअली चंद्रमा से ज्यादा सुंदर तो आपके शरीर में है, देखो आपका मुख चंद्रमा की तरह है, आपके शरीर के सब अंग चंद्रमा की तरह हैं। एक्चुअली चंद्रमा देखो बादल के पीछे छिप रहा है, क्यों छिप रहा है, क्योंकि आपकी सुंदरता का देखकर उसको शर्म आ रही है, इसलिए आपका शरीर सबसे ज्यादा सुंदर चंद्रमा है, इस तरह उनको समझाने लगे। एक दिन शची माता षष्ठी देवी की आराधना करने जा रहे थे, ये एक देवी है जो बंगाल में पूजा की जाती है, से कि बच्चे के जीवन में कोई बाधाएं नहीं आए, इसीलिए वो षष्ठी देवी की आराधना करने के लिए एक प्लेट बना के जा रहे थे, जिसमें कुछ फ्रूट्स, कुछ फल और कुछ मिठाइयां थे, और उसका उद्देश्य क्या था कि ये पूजा करने से निमाई के जीवन में कोई बाधाएं नहीं आए। तो अपने प्लेट को भर के उसको कपड़े से ढक कर ले जा रहे थे, कोई देखे नहीं उसको, और निमाई दौड़ते हुए आए। माता बोली निमाई ये हाथ डालने लगे, निमाई मत, ये पूजा के लिए, ये सारे जो भी अमंगल है सारे भी ऑब्स्टेकल दूर करने वाले के लिए। निमाई बोले अभी तुमको पता नहीं सबसे बड़ा अमंगल क्या है, मुझे भूख लगी है। निमाई ने हाथ डाल के प्रसाद खाना शुरू किया, और सची माता परेशान हो गई कि क्या किया जाए, तो झूठा हो गया। निमाई तुम्हें क्या कर रहे हो सची देवी के लिए। निमाई हंस के बोले माता तुम जानते नहीं हो सारे देवी देवता मेरे ही दास हैं, दासियां हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचा ऐसे तैसे करे नित्य। और निमाई ने बताना शुरू किया, जैसे आप पेड़ के जड़ में पानी डालते हो तो सब भागों में पानी चला जाता है, जैसे पेट में भोजन देते हैं तो सब भाग को उसका लाभ मिलता है, ऐसे अगर मुझे कुछ मिल गया तो सब देवी देवता संतुष्ट रहते। कभी कभी निमाई अपनी वास्तविक तत्व को प्रकट कर देते हैं। शची माता को समझ में नहीं आया, वो प्लेट लेकर गए शची देवी के पास और प्रार्थना करने लगे कि मेरा निमाई छोटा बालक है, इसके अपराध को क्षमा कर दो या ऑफरिंग को ग्रहण कर लो। एक दिन निमाई खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ और खेलते खेलते कुछ एक छोटे एक पपी जो कुत्ते का बच्चा होता है, क्या बोलते हैं इसको, पिल्ला, यस पिल्ला, यस हमारे कॉलेज में प्रोफेसर का नाम था पिलाई प्रोफेसर, तभी मुझे इसका अर्थ पता नहीं था, नहीं है ना, साउथ इंडिया में होता है सर, है ना, पिलाई। तो छोटा सा पिल्ला को ले लिया उन्होंने, बहुत सुंदर था, बहुत सारे पिल्ले थे और निमाई ने एक को पसंद किया, ये मेरा है। सब बोले निमाई ये ठीक नहीं है, सबसे सुंदर वाले को आप ले जा रहे हो। निमाई बोले नहीं मुझे प्रिय है। निमाई उसको अपने घर में ले गए, जानते हैं जगन्नाथ मिश्र शची माता ये ब्राह्मण परिवार से है और जनरली ब्राह्मणों के घर में कुत्ते नहीं रखे जाते, है ना। शची माता बोले निमाई ये क्या है, ये डॉग्स नॉट अलाउड, यहाँ कुत्ते को नहीं अलाउड है। निमाई बोले नहीं नहीं मेरे को बहुत प्रिय, नहीं नहीं इसको बाहर ले जाओ, नहीं नहीं मैं घर में नहीं रहूंगा। शची माता कुछ नहीं बोल सके, निमाई के साथ खेलते उसके, कितना भाग्यशाली है भगवान का पिल्ला बनना है, भगवान का एक पपी बनना, स्वर्ग के राजा इंद्र बनने से अच्छा है ना। स्वर्ग के राजा इंद्र कितने सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नहीं कुछ होता है, कोई घोड़ा ले गया इंद्र को टेंशन आ जाता है ना, कोई किसी के, है ना। लेकिन अगर भगवान के साथ जुड़े रहने से ही हमारे जीवन की सफलता है, चाहे हम पिल्ला बने या इंद्र बने या इंद्र गोप बने। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कीट जन्म हो यथा तुवा दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं कवाश। मैं चींटी का भी जन्म मिल जाए आपके दास के रूप में, आपके दास के घर में, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि स्वर्गलोक में या ब्रह्मलोक में भी चले गए। अगर भक्तों का संग नहीं है तो क्या लाभ है। ये हमें हमेशा ही अभिलाषा करनी चाहिए, जो बड़े संत मुनि ऋषि मुनि बताते हैं, तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म में हो यही अभिलाष, कि भक्तों के संग में रहें, हरि कथा सुने और भगवान का नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो प्रथा है यहाँ पर कि रोज सवेरे कथा सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं सोचा था शायद सर्दी के कारण कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतने डिवोटीज आ रहे हैं। अभी शाम का कार्यक्रम, शाम को भी है ना कार्यक्रम, आज तो शायद नहीं है, लेकिन अभी मैं जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ मैं प्रयास करूँगा, रोज सुबह शाम भगवान का श्रवण करना चाहिए। और अगर मंदिर में नहीं भी है तो अपने आप से घर में या जहाँ भी आप हैं, क्योंकि ये हमारा जीवन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये जब इस्कॉन एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें दवाई है, भगवान की कथा, भगवान का नाम। मान लो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मल्टी स्टोरीड है, अच्छे रूम है, कैंटीन बहुत बढ़िया है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं है और दवाई नहीं है तो क्या लाभ है। तो आपके पास ये दवाई है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर खुद नहीं आ सके रोज, लेकिन दवाई लिख के जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ के CMO हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सवेरे शाम कथा सुनो, 16 माला कम से कम करो, हो सके तो हमेशा नाम लो। ये जितना ज़्यादा आप डोज लोगे उतना जल्दी आप बीमारी से मुक्त हो जाओगे। वी शुड इंटेंसीफाई श्रवणम कीर्तनम। ये हमारा सौभाग्य है कि हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, जिस कॉजलेस मर्सी। जैसे किसी कंगाल व्यक्ति को एक कोई बड़े महल का राजा बना दिया जाए, ऐसे हम पतित जीवों को गुरुदेव की कृपा से ब्रज रज के दर्शन हो रहे हैं, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। अगर आपको पता चले कि कितना दुर्लभ है तो शायद आप सुन के बेहोश हो जाएं कि कितना दुर्लभ है ब्रज धाम में एक क्षण के लिए प्रवेश भी करना। कितने सारे जीव हैं ब्रह्मांड में और वृंदावन धाम तो एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, राइट शिव कृष्ण प्रभु, ओनली वन ब्रह्मांड, उसको ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता। एक डिवोटी बंबई में पूछ रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज की क्लास थी, महाराज जी हमारी सेवा बहुत होती है तो अगर हम बाद में सुन लें, यू नो रिकॉर्डिंग सुन के, तो महाराज बोलते हैं कि जब हम सुनते हैं कि नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बैठे हैं पवित्र नदी के किनारे, तो मिलकर कथा सुन रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम जो है भक्तों के संग में होना चाहिए। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो, कहीं हम सुनते नहीं है कि सारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं, हम अपना अपना अलग अलग पुस्तक कुटिया में पढ़ लेंगे या अपना अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे, है ना, वो भी अच्छा है, प्राइवेट टाइम है, लेकिन सवेरे शाम भक्तों के संगति में आना, एक 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 कल्चर है, वैदिक कल्चर, कि भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप भक्तों के संग में करना, क्योंकि संगति में शक्ति आती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो नीमाय वो छोटे से पिल्ला के साथ खेल रहे थे बहुत देर तक, और नीमाय थोड़ी देर के लिए बाहर गए, शची माता ने उसकी रस्सी खोल दी और हरे कृष्ण। नीमाय लौट के आए, अरे कोता गेला मोरा कुकुर, हियर इज माय डॉग, ढूंढने लगे, ढूंढते 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 वहां गए, देखा क्या किनारे पर वो कुत्ता, उसके आसपास कई लोग हैं और वो कुत्ता सबको प्रेरणा दे रहा है हरि नाम लेने के लिए। वो एक छोटा सा भक्ति वृक्ष प्रोग्राम हो गया, कुकुर भक्ति वृक्ष, और कई सारे मानव भी उसकी प्रेरणा से भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस कुत्ते के अंदर प्रेम के अष्ट विकार प्रकट हो रहे थे, रो रहा था, आंखों में शरीर एक्सटेसी में कांप रहा था, सबके देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और एक विमान भगवान के धाम का, ये एयर इंडिया या इंडिगो नहीं, जो बहुत आवाज करते हैं और हरे कृष्ण, बहुत सारे हम न्यूज सुनते हैं उनके व्यवहार के बारे में, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स विमान, कई पार्षद भगवान के उस दिव्य वैष्णव जो कुत्ते के शरीर में था उसको वापस भगवत धाम ले जाते। जैसी कोजनदास ठाकुर बोलते हैं, देखो भगवान शचिनंदन की कृपा, कि कुकुर जनरली कुत्ते को अपवित्र माना जाता, कुत्ते का जन्म बहुत ऊंचा नहीं माना जाता, हम बोलते नहीं कि आप कितने सुंदर हो, कुत्ते की तरह लग रहे हो। ये आपको भी बड़े वरदान दे प्रभु जी, आप कुत्ता बन जाओ, नहीं, लेकिन वैष्णव का कुत्ता बनना, भगवान का कुत्ता बनना, भक्ति विनोद ठाकुर भी इच्छा करते, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर, आई वॉन्ट टू बिकम योर डॉग। गौरलीला में शिवानंद सेन का एक कुत्ता था जो यात्रा में उनके साथ जा रहा था, शिवानंद सेन उसको प्रसाद खिला रहे थे, और एक दिन जब वो कुत्ते को भोजन नहीं मिला, वो अलग हो गया, तो शिवानंद सेन को इतना बुरा लगा, मैंने एक वैष्णव अपराध किया, आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा। लेकिन जब वो थोड़ी दूर पे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो क्या देखा, वो कुत्ता पहले ही पहुंच गया था, ये सब पैदल गए, शायद वो हावड़ा पूरी एक्सप्रेस से गया होगा, और महाप्रभु उसको अपने हाथ से नारियल की मलाई खिला रहे थे, और उसको खिलाते खिलाते बोल रहे थे, बोलो कृष्ण कृष्ण, इतना जोर से बोलिए, कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, और वो कुत्ते को भगवान की प्राप्ति होगी। शिवानंद से कुत्ते को प्रणाम कर रहे थे, मेरा अपराध क्षमा कर। एक और कथा लोचनदास ठाकुर बताते हैं कि मुरारी गुप्ता जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते, लेकिन कभी कभी शायद कोई थोड़ी दूसरी चीजें बताते, तो इसीलिए महाप्रभु एक दिन बोले, मुरारी आज मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अ लेसन, आज प्रसाद के समय 9 बजे मैं आपको एक लेसन सिखाऊंगा। मुरारी गुप्ता सोचे थे क्या सिखाएंगे, तो अपने घर चले गए, 2-3 घंटे बीत गए, और दोपहर को प्रसाद खाने बैठे, और ठीक उस समय जैसे ही खाना शुरू किया, दरवाजा खुलते ही नीमाई ने अंदर प्रवेश किया। नीमाई छोटे बालक थे, उनके कपड़े दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मतलब हरे कृष्ण, वो नेचुरल सूट में थे, बच्चों के लिए अलाउड होता है, और नीमाई आते ही हंस के बोले, नी मुरारी मैं आ गया। मुरारी सोचे थे आज बोला था क्या खिलाएंगे, वो खा रहे थे बहुत फर्स्ट क्लास अच्छा चावल दाल सब्जी और खीर और पनीर और छोले और जो भी बंगाल में तो अलग मिठाइयाँ होती हैं संदेश, और वो खाने लगे, और नीमाई बहुत पास में आए, बहुत पास में आए, बिल्कुल पास में आए, एकदम पास में आके उनके प्लेट में पेशाब कर दिया। हरे कृष्ण, अभी आगे क्या हुआ आप बताना अच्छा नहीं लग रहा, ऑब्वियसली टेस्ट नहीं रहा होगा, है ना। तो मुरारी गुप्ता एकदम स्टंड हो गए, क्या किया जाए, ये बालक को डांट भी नहीं सकते। नीमाई हंस के बोले, देखो ये इतना सुंदर प्रसाद है, लेकिन इसमें जब ये मिक्स किया जाए तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी शुद्ध भक्ति में, जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति है, उसमें अगर ज्ञान या कर्म मिक्स किया जाए तो भगवान को प्रिय नहीं होता, भगवान सिखाना चाहते थे। हरे कृष्ण। मैं दो भजन पे भी चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए कहानी को शॉर्ट में बताऊंगा। निमाए के कुछ भक्त कीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और सब भक्तों को बहुत देर हो गई, प्रसाद का समय हो गया, और अभी भी मंदिर से बहुत दूर थे, घर से वो जंगल में थे, मानवद्वीप गोद्रुम द्वीप में। और फिर भक्तों को भूख लगी थी, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उन्होंने अपने हाथ में एक आम का बीज लिया, मैंगो सीड, और सबके सामने वो बीज को जमीन में बोया। कुछ ही सेकंड्स में उसमें सुंदर एक वृक्ष प्रकट हुआ, कुछ ही क्षणों में वो वृक्ष फूलने लगा, फलने लगा, उसमें सुंदर सुंदर पत्तियां आए, सुंदर सुंदर फल आ गए, आम के फल। और महाप्रभु एक भक्त को बोले कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ के सब भक्तों के लिए फल ले आओ, सबके लिए फल ले, बहुत आम लाल पीले एकदम जूसी। हरे कृष्ण सुन के यू नो यू फील सलाइवा सीक्रेशन स्टार्ट। और सबको एक एक आम दिया गया, अभी आम तो सब खाते हैं, आम खाना आम बात है, लेकिन ये आम की विशेषता थी, क्या विशेषता थी ये आम की, उसके घुटली भी नहीं थी और बीज भी नहीं थी, स्किनलेस सीडलेस मैंगोस। और एक एक आम एक भक्त को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले थे, ये भगवान की कृपा थी। इसका तात्पर्य एक है कि ये भक्ति जो है शुद्ध आम की तरह है, लेकिन ज्ञान और कर्म छिलके और बीज की तरह है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं शुद्ध भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम, जो मतलब ज्ञान और कर्म से मुक्त भक्ति है। तो महाप्रभु ऐसे भक्ति दे रहे हैं, शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम शुद्ध मैंगो की तरह, कितना स्वीट है नहीं। अगर आम कोई बिना छिलके बीज के आपको कहीं कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, जनरली अगर आप आम खाओगे तो पता चल जाता है, क्योंकि बीज कहीं तो फेंकना होता है, लेकिन बिना बीज के हो तो हरे कृष्ण इट्स लाइक रसगुल्ला की तरह। अब मैं इस भजन पे चर्चा करूंगा जो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। ये भजन एक बार अमेरिका में एटलांटा जॉर्जिया में प्रभुपाद जी ये भजन गा रहे थे, परम करुणा प्रभु द्विजना। आज शाम को हमारे सारंग ठाकुर प्रभु जी भी 7 से 8:30 कीर्तन करने वाले, अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें प्रभु जी बहुत अच्छी आवाज में, प्रभु जी को स्पेशली भगवान की कृपा मिली है, तो उसमें आप सब सुनेंगे। तो ये भजन प्रभुपाद जी एक बार गा रहे थे, और गाते गाते बिल्कुल भाव विवल हो गए, एक्सटेसी में हो गए और रोने लगे। जनरली प्रभुपाद जी ये लक्षण प्रकट नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी न चाहते हुए अविरल अश्रुओं की धारा हो जाती, तो ऐसी एक अवस्था थी। तो प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है, जिसके आधार पर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। बोल रहे हैं परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र, ये दो व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, परम करुण है। सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों के शिरोमणि है। मणि आप जानते हैं ज्वेल, बहुत मूल्यवान चीज है। शिरोमणि मतलब सब मणियों में श्रेष्ठ है। तो भगवान के सारे अवतार अच्छे हैं, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कुर्म अवतार, कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, अवतार ही असंख्य। भागवत में बताया गया कि भगवान के अवतार समुद्र के लहरों की तरह, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, और वही कृष्ण जो है गौरंग महाप्रभु के रूप में। एक बार श्रील प्रभुपाद कुछ भक्तों की दीक्षा देने वाले थे, और दीक्षा से पहले इंटरव्यू ले रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा भक्त से कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो भक्त ने जवाब दिया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण अवतारी हैं, तो इसीलिए इनका विशेष स्थान है, क्योंकि और कोई अवतार में भगवान कृष्ण प्रेम इतने आसानी से नहीं देते। भगवान राम अपने पार्षद को लेकर आते, उनके साथ ही लीला करते हैं, जिन असुरों को मारते हैं उनका उनको उनकी लीला में पूर्ण भाग मतलब उनका वध कर दिया जाता है, लेकिन उनके पार्षद नहीं बनते। भगवान नरसिंहदेव आते हैं, हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान रामचंद्र जी आते हैं, रावण और कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। भगवान कृष्ण शिशुपाल और दंतवक्र का वध कर देते हैं। लेकिन वही शिशुपाल दंतवक्र रावण कुंभकर्ण जब जगाई मदई के रूप में आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको कृष्ण प्रेम देते हैं जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। इसीलिए बताया गया सब अवतार सार शिरोमणि एसेंस ऑफ ऑल अवतार। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। भाई बोल रहे हैं हे भाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन करो उनकी सेवा करो। और प्रभुपाद ये बोलते हैं यहाँ पर सुदृढ़ विश्वास करी मतलब ये विश्वास करो कि ये भगवान का नाम लेने से ही सारी पूर्णता मिल जाएगी। इहा हैते सर्व सिद्धि ये भगवान का नाम लेने में ही पूर्ण परफेक्शन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 और कोई उपाय की जरूरत नहीं जिस नाम में इतनी शक्ति है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जस्ट दिस थ्री प्रोसेस आर नीडेड चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग कीर्तन नृत्य और प्रसाद बस और किसी की जरूरत नहीं है। फिर आप बोले प्रवचन किस लिए कर रहे हैं नहीं ये प्रवचन इसीलिए कि आप कीर्तन और नृत्य और प्रसाद लेते रहे जीवन भर उसके विश्वास बढ़ाने के लिए। नहीं तो वास्तव में बस कीर्तन हरि नाम में सब कुछ है। विषय छाड़िया सिर से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया भगवान की भक्ति करनी है तो धीरे धीरे इंद्र तृप्ति के विचारों को त्याग देना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं भक्ति भी करूंगा और इंद्र तृप्ति नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब कुछ प्रोसेस में कुछ पालन करने में कुछ कमी है। क्योंकि जैसे हम भक्ति करते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत आसु वैराग्यम ज्ञानम च यदयत। अपने आप ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। तो विषयों को त्याग देना और मुख से बोलना मुखे बोलो हरी 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 हरी। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमोनो दयाल दात। पूरा रिसर्च कर लिया है। कोई चीज खरीदी करते हैं चेक करते हैं ये स्टोर में क्या दाम है। आजकल तो लैपटॉप पे ही चेक हो जाता है ईबे में क्या है फ्लिपकार्ट में क्या है ना भी चेक करते हैं। तुमने सब जगह चेक कर लिया स्वर्गलोक वेबसाइट पे जनलोक तपोलोक महरलोक त्रिभुवन में इनसे बढ़कर दयालु कोई नहीं है। इतना अच्छा डील कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम सिर्फ हरि नाम से। वैसे मान लो कोई अनाउंसमेंट करता है जैसे यहाँ पे आपको वृंदावन में फ्लैट लेना है 25 लाख कम से कम 20 लाख कोई अनाउंसमेंट करता है कि एक फ्लैट है जो 1 लाख में मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग के हाथ अभी ऊपर होने जैसे अभी बुक करना चाहते हैं। लेकिन मान लो एक कोई व्यक्ति इसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो 1 लाख भी नहीं दे पा रहा। ऐसी हमारी स्थिति है कि कृष्ण प्रेम जो इतना दुर्लभ है इसको प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या से भी नहीं मिलता वो प्रेम आपको सिर्फ यहाँ बैठे बैठे नाम जप से मिल रहा है। लेकिन हमारी दुर्दैव क्या है कि वो नाम में रुचि नहीं है नाम में नींद आ रही है नाम में मन नहीं लग रहा नाम जप पूरा करना ही मुश्किल हो रहा है। तो हमारा दुर्दैव है। जैसे गरीब व्यक्ति से कुछ भी नहीं है वो क्या करता है 1 लाख के लिए कहीं से मांगता है प्रभु जी आपके पास 1000 रुपये हैं आपके पास 5000 हैं आपके पास 500 है ऐसा करके वो कहीं से भीख मांग के करते। तो हमारी यही स्थिति हम भीख मांग रहे हैं गुरु से वैष्णव से कृपा बिंदु दिया थोड़ी श्रद्धा दो तुम्हें श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने ये कृष्ण नाम में रुचि दो मेरे को दया करो गुरुदेव तभी नाम में रुचि आएगी। नाम में रुचि आएगी तो फिर कृष्ण प्रेम मिलेगा। पहले कृष्ण नाम लेने से कृष्ण प्रेम और फिर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो हमें रोज जप शुरू करने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए मेरे पर दया करो मेरे पर दया करो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक अतिहीन। अगली लाइन में बोलते हैं पशुपाकी झूरे झूरे मतलब रोने लगते हैं जानवर भी प्रेम से रोने लगते हैं। जब महाप्रभु झारखंड जंगल में जा रहे थे उन्होंने एक शेर को देखा वो शेर सोया हुआ था। अभी आप देखते हैं शेर सोया है सोया जा गया भागना चाहिए हाँ। तो महाप्रभु ने क्या किया शेर को थप्पड़ मारा रचांत हरे कृष्ण और वो शेर शेर की आवाज में गाने लगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पीछे एक भक्त हाथ करके दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे लाइव परफॉर्मेंस है ना। और फिर उन्हें हिरण को बोला चैंट हरे कृष्ण और शेर और हिरण गले मिलके नृत्य करने लगे। कभी आपने देखा है शेर और हिरण गले मिल रहे हैं पेंटिंग में देखा होगा। जनरली हिरण शेर को देखते ही भाग जाते हैं और शेर हिरण को देखते ही सोचते हैं, क्या बोलते हैं, महाप्रसादी, यस नौ बजे महाप्रसादी गोविंद। लेकिन शेर और हिरण का मिला। और पाषाण विदुरे, पाषाण किसको बोलते हैं, पाषाण पत्थर, पत्थर पिघल जाता है। यहाँ पे गोवर्धन में हम देखते हैं कई जगह पे शिला पिघल जाती है श्याम सुंदर के चरणों के स्पर्श से, और वही श्याम सुंदर गौर सुंदर के रूप में आए। और अंत में बोलते हैं, संसारे मजिया रही लोक पोड़ी से पद नाही को आश, मेरा दुर्भाग्य है मैं संसार में गिर गया हूँ और मेरे को कोई प्रेम नहीं है भगवान से, मेरा दुर्भाग्य। लास्ट एक छोटा सा भजन बोल के अंत करेंगे और वो है, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ा। अकरोध ये अवतार है, ये भी भजन लोचन दास ठाकुर का लिखा हुआ दूसरा भजन है, नित्यानंद प्रभु के बारे में। पहला वाला था गौर निताई के बारे में। अकरोध, अकरोध क्रोध नहीं आता, यही नित्यानंद प्रभु पूर्व अवतार में बलराम जी थे तो सकरोध है, इतना गुस्सा आता है उनको कि एक बार वो देखते हैं कि रोमहर्षण सूत नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत प्रवचन कर रहे हैं, अब बलराम जी के आने पे उठते नहीं हैं, आदर नहीं देते, तो बलराम जी एक घास का तिनका ऐसे रखते हैं और बस रोमहर्षण सूत गायब, लेक्चर देने वाले ही हरि बोल खत्म। और बाद में उग्रशेव सूत को उस पद पे रखते हैं, तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है जब दुर्योधन थोड़े बदमाशी करते हैं, भगवान के बेटे को गिरफ्तार कर देते हैं सांब को, तो बलराम जी इतने गुस्से हो जाते हैं कि पूरे हस्तिनापुर शहर को अपने हल के ऊपर उखाड़ लेते हैं। बलराम जी छोटा काम नहीं करते जो जेबीसी मशीन में होते हैं, वो खुद ही पूरा शहर उठा लेते हैं। लेकिन वही बलराम जी अब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और सिर पे इतना प्रहार होने पर भी वो उनको क्षमा कर देते हैं, इसलिए बोला कि अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य, कोई अभिमान नहीं है उनको, वो नगर नगर घूमते हैं और क्या करते हैं, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीचे न बिलाई। वो दरवाजे दरवाजे पे जाकर सबको बोलते हैं कि हरि नाम लो, पतितों के पास जाते हैं और बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जारे देखे तारे कहे दंते त्रिणाधारी अमारे की नियाला बोलो गौर हर, जिसको भी देखते हैं उसको बोलते हैं कि आप हरि का नाम लो और अमर किनीय आप मुझे खरीद लोगे अगर आप एक बार बोलोगे गौर हरि। और फिर क्या होता है, एता बोली नित्यानंद भूमि गोड़ी जाय सोनार पर्वत जेन धूलते लोटाए। ऐसा बोलते बोलते नित्यानंद प्रभु वो मिट्टी में धूल में लोटने लग जाते हैं जैसे कोई सोने का पर्वत धूल में लोट रहा हो। हीनो अवतार जर रति न जन्मिलो लोचन बोले से पापी एलो आर गेल। इतने दयालु है नित्यानंद प्रभु, अगर किसी ने इस अवतार से प्रेम नहीं किया तो लोचन दास ठाकुर बोलते हैं से पापी एलो आर गेलो, का जन्म हुआ और व्यर्थ ही मृत्यु हो गई। तो ये कुछ भजन है और भी हैं, अभी समय नहीं है लेकिन आपको समय मिले दिन में आप पढ़ सकते हैं। निताई गुण मणि आमार निताई गुण मणि, दो मिनट आंख बंद करके सब लोग लोचन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांगे कि हम भी गौरंग और नित्यानंद के लीलाओं का गान कर सकें और शुद्ध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील लोचनदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।